नमस्कार भारत तारीख 1 अगस्त दिन सोमवार आपके साथ मैं अशोक कुमार। एक मुसलमान अमरीकी फौजी की मां का रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप पर पलटवार, कहा वो क्या जाने कुर्बानी क्या होती है।
Sacrifice, I don't think he knows the meaning of the sacrifice, meaning of the word.
बुलंदशहर गैंग रेप मामले में कई पुलिस अधिकारी सस्पेंड, सीएम अखिलेश फिर विरोधियों के निशाने पर, और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव बनाएंगे नई पार्टी।
आपको एक पांव सत्ता की राजनीति सरकार चुनाव में रखना ही होगा, लेकिन दोनों पांव अगर उसमें रख दिए तो फिसलना अवश्यम भावी।
खबरें होंगी खेल की भी, लेकिन सबसे पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। इराक में तैनाती के वक्त मारे गए एक अमरीकी सैनिक की मां गजाला खान ने आरोप लगाया है कि रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को इस्लाम और कुर्बानी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में गजाला की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। इस अधिवेशन में गजाला के पति ने अपने भाषण में मुसलमानों को लेकर ट्रंप के रुख की आलोचना की थी। गजाला अपने पति के साथ मौजूद थीं, लेकिन वो पूरी तरह चुप थीं। ट्रंप का कहना था कि हो सकता है कि उन्हें बोलने की इजाज़त न दी गई हो। इसके जवाब में गजाला खान ने वाशिंगटन पोस्ट में एक लेख लिखा और बताया कि वो बहुत व्यथित थीं, इसलिए कुछ बोल नहीं सकीं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के बाहरी हिस्से में स्थित नॉर्थ गेट कंपाउंड पर हमले की खबर है। यह जगह बगराम एयरबेस के करीब है और यहाँ विदेशी कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक यहाँ एक ट्रक बम के जरिए धमाका किया गया। 3 साल पहले भी यहाँ ऐसा हमला हो चुका है। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है और बताया है कि कई लड़ाके वहाँ दाखिल हो गए हैं। अफगान प्रशासन ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। हताहतों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। ब्राज़ील की निलंबित राष्ट्रपति ज़िल्मा रुसेफ की बर्खास्तगी की मांग को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शन में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। ज़िल्मा रुसेफ पर आंकड़ों में हेरफेर कर घाटा छुपाने का आरोप है, जिससे वो इनकार करती रही हैं। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में 5 अगस्त से ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। इस प्रदर्शन में शामिल चार्ल्स पुज ने कहा, मुझे लगता है कि हमें यह साफ करने के लिए लगातार दबाव बनाना होगा कि हम उनकी वापसी नहीं चाहते हैं। सीनेट करीब 1 महीने के दौरान अंतिम फैसला लेने जा रही है। हम सीनेट को संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें वापस मत आने दो, उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाना चाहिए। हम दूसरा संदेश पूरी कांग्रेस को देना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसा कानून बनाया जाए जिससे भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजने में आसानी हो। ये थे चार्ल्स पुज के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मलेशिया में सुरक्षा से जुड़ा एक नया कानून अमल में आ गया है। इससे प्रधानमंत्री नजीब रजाक को नई शक्तियां मिल गई हैं। इसके जरिए रजाक देश के किसी भी हिस्से को सिक्योरिटी जोन घोषित कर सकते हैं। इस क्षेत्र के अंदर पुलिस बिना वारंट के लोगों, वाहनों और इमारतों की तलाशी ले सकेगी। प्रधानमंत्री का कहना है कि चरमपंथ पर रोक लगाने के लिए कानून जरूरी था, लेकिन कई अन्य लोगों ने आशंका जताई है कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल विरोधियों को चुप कराने के लिए कर सकती है। जापान की राजधानी टोक्यो में पहली महिला गवर्नर निर्वाचित हुई हैं। पर्यावरण और रक्षा मंत्री के तौर पर काम कर चुकी यूरिको कोइको प्रधानमंत्री की पार्टी की सदस्य हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी की हिंदी सेवा से कार्यक्रम नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव, और आपके साथ मैं अशोक कुमार। कार्यक्रम में आज बात सबसे पहले अमेरिका की, जहां नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के चलते सियासी माहौल गर्म है। आए दिन नए नए बयान आ रहे हैं, नए नए विवाद सामने आ रहे हैं और नए नए चुनावी पैंतरे देखने को मिल रहे हैं। ताज़ा मामला रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का है, जो अपने मुसलमान विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल उनकी आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि उन्होंने एक मुसलमान अमरीकी सैनिक की मां का मजाक उड़ाया है, उनकी चुप्पी पर तंज कसा है। गजाला खान कैप्टन हुमायूं खान की मां हैं, जिनके बेटे ने इराक में 2004 में एक कार बम धमाके में अपनी जान गंवाई थी। गजाला खान ने अब डोनाल्ड ट्रंप पर पलटवार किया है और उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी ही नहीं बल्कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कई नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोग गजाला खान के हक में काफी कुछ कह रहे हैं। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए वात्सल्य राय से।
एक खामोशी सवालों के घेरे में थी, जब वो टूटी तो उसने अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने की रेस में लगे डोनाल्ड ट्रंप की समझ पर कई सवाल खड़े कर दिए। इस्लाम को लेकर उनकी जानकारी के बारे में, कुर्बानी को लेकर उनकी समझदारी के बारे में, ये सवाल उठाने वाली हैं गजाला खान, जिनके 27 बरस के बेटे हुमायूं खान साल 2004 में इराक में मारे गए थे। वो अमरीकी सेना में कैप्टन थे। कैप्टन हुमायूं के पिता खिजर खान ने बीते गुरुवार को डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में ट्रंप पर तीखा हमला किया था। गजाला उस वक्त अपने पति के साथ खड़ी थीं, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थीं। ट्रंप ने उनकी इसी चुप्पी पर सवाल उठाए थे। ट्रंप ने एबीसी न्यूज के एक कार्यक्रम में कहा,
I saw him. He was, you know, very emotional and probably looked like a nice guy to me. His wife,
मैंने उनको देखा, वो बहुत भावुक थे, वो मुझे एक अच्छे इंसान लगे। अगर आप उनकी पत्नी की तरफ देखें तो वो भी वहाँ थी, उनके पास कहने को कुछ नहीं था, शायद उन्हें कुछ कहने की इजाज़त नहीं दी गई हो। तमाम लोगों ने ये कहा और निजी तौर पर मैंने भी देखा। मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की आलोचना शुरू हो गई, लेकिन सबसे तीखा जवाब खुद गजाला खान ने दिया। उन्होंने कहा,
सैक्रिफाइस, आई डोंट थिंक ही नोज द मीनिंग ऑफ द सैक्रिफाइस, मीनिंग ऑफ द वर्ड, बिकॉज़ व्हेन आई वाज स्टैंडिंग देयर ऑल अमेरिका फेल्ट माय पेन।
कुर्बानी, मुझे नहीं लगता कि उन्हें शब्द के मायने पता हैं, क्योंकि जब मैं वहां खड़ी थी बिना एक शब्द कहे पूरे अमेरिका ने मेरे दर्द को महसूस किया। हर किसी ने उस दर्द को महसूस किया, लेकिन मुझे पता नहीं उन्होंने इसे कैसे अनदेखा कर दिया। गजाला इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को इस्लाम को लेकर कोई इल्म नहीं है। गजाला ने कहा कि मजहब उन्हें ताकत देता है। उन्होंने कहा,
We are equal. We are the part of our husbands. They are part of us. We can tell them what to do. They can tell us what to do.
हम बराबर हैं। हम अपने पति का हिस्सा हैं, वो हमारा हिस्सा है। हम उन्हें बता सकते हैं कि हमारे लिए क्या करना है, वो हमें बता सकते हैं कि क्या करना है। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस इस्लाम के बारे में पढ़ा और सुना है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी को पढ़ा है, बल्कि सिर्फ सुना है। मुझे इस बात का बेहद दुख है कि उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं है कि इस्लाम क्या है। ये थे गजाला खान के शब्द। गजाला खान को डेमोक्रेटिक ही नहीं, रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। कई नेता ट्रंप के बयान से दूरी बनाते दिखे हैं। इनमें अमरीकी सीनेट के नेता मिच मैकोनल भी शामिल हैं। उन्होंने गजाला के बेटे कैप्टन खान को अमरीका का हीरो बताया। मिच ने अमरीका में मुसलमानों के दाखिल होने पर पाबंदी लगाने के ट्रंप के प्रस्ताव को भी खारिज किया है। उनका कहना है कि ये अमरीकी मूल्यों के अनुकूल नहीं है।
बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार आपको सुना रहे थे वात्सल्य राय। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने इस तरह का बयान दिया है, लेकिन इस बार वो किसी राजनेता से नहीं बल्कि इराक में जान गंवाने वाले एक अमरीकी फौजी की माँ से उलझे हैं। इसका उन्हें कितना नुकसान होगा या फिर फायदा होगा, इसका जायजा हम लेंगे अपने अगले कार्यक्रम में।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब रुख करते हैं भारत का। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक परिवार से पहले लूटपाट और फिर उनकी महिलाओं से सामूहिक बलात्कार के मामले ने राज्य के कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकार ने इस मामले में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, लेकिन घटना के करीब 48 घंटे बीत जाने पर भी अब तक इस मामले में कोई बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ नहीं लगी है। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
शुक्रवार देर रात बुलंदशहर में हुई ऐसी गंभीर घटना पर जिले की पुलिस अगले दिन तक हरकत में नहीं आई, लेकिन मीडिया में इस खबर के आने के बाद मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर केस की मॉनिटरिंग शुरू की। नतीजा ये हुआ कि तुरंत ही राज्य के आला अधिकारी, मसलन गृह सचिव, DGP, IG, DIG सब घटनास्थल पर दिखने लगे। यही नहीं, सरकार ने जिले के SSP समेत संबंधित थाने और इलाके के लगभग हर जिम्मेदार पुलिस अधिकारी, SP सिटी, CO, दो इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया। बावजूद इसके राज्य की कानून व्यवस्था की कथित खराब हालत की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर तो इसे लेकर टिप्पणियां आ ही रही हैं। राजनीतिक पार्टियां भी कानून व्यवस्था के मामले में सरकार को अपने निशाने पर ले रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो मुख्यमंत्री के इस्तीफे तक की मांग कर डाली है। BJP के प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक कहते हैं,
उत्तर प्रदेश में न्यायालय और मीडिया के भरोसे आम आदमी को न्याय मिल पा रहा है। अखिलेश सरकार पूरी तौर पर फेल है। राज्य में जंगल राज की स्थिति है। इस घटना से पूरे उत्तर प्रदेश की बदनामी हुई है। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा हुआ है कि आखिर मीडिया ने आज जब हाइट दी तो सरकार फौरी तौर पर कुछ इनको निलंबित कर दिया, कुछ इनको निलंबित करके अपने बचाव की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर सरकार फंक्शन नहीं कर रही है, यह बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि नहीं है।
वही कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अपराधियों में सरकार का डर ही खत्म हो गया है, इसलिए ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। पार्टी नेता रीता बहुगुणा जोशी कहती हैं,
घटना के बाद कार्रवाई हो ये तो एक प्रक्रिया हुई, लेकिन घटना पे घटना हुई क्यों? वो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में बेखौफ होकर जो क्रिमिनल्स हैं वो घूम रहे हैं, और वो बेखौफ इसके घूम रहे हैं क्योंकि उनको थानों का डर नहीं है कि उन्हें कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है।
समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस मामले में सरकार जितनी तत्परता दिखा सकती थी उसने किया, लेकिन राजनीतिक दल इस मुद्दे पर जबरन सरकार को घेर रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी,
ये घटना बहुत दुखद है। राज्य सरकार तमाम वो उपाय कर ले जिससे इस तरह घटनाओं का पुनरावर्ति न हो। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बहुत दुखी हैं इस घटना को लेकर के, और जो भी इसके लोग जिम्मेदार होंगे, चाहे वो अपराधी हो जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, और चाहे अधिकारी हो, पुलिस के लोग हो जो इनकी लापरवाही के कारण दिक्कत पैदा हुई है, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री सख्त एक्शन करेंगे। लेकिन जहां तक राजनीतिक दलों की बात है तो राजनीतिक दलों को तो पीड़ित परिवार के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, उसे उन्हें तो राजनीति करनी है।
शुक्रवार रात नोएडा से कानपुर जा रहे एक परिवार के लोगों के साथ पहले लूटपाट की गई और फिर एक महिला और उनकी बेटी के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया गया। इस मामले में सरकार ने रविवार सुबह ही 15 लोगों को हिरासत में ले लिया था। राज्य के पुलिस महानिदेशक जावेद अहमद ने रविवार को बताया था कि पीड़ित लोगों ने इनमें से 3 की पहचान की है। पुलिस के मुताबिक अभी पूछताछ जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश, कई अधिकारियों के निलंबन, आला अधिकारियों के दौरों और पुलिस के सभी संसाधनों को झोंक देने के दावे के बावजूद पुलिस अभी असली अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
आम आदमी पार्टी से अलग होने के करीब एक साल बाद योगेंद्र यादव ने भी अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि पार्टी के गठन की सारी औपचारिकताएं इसी साल 2 अक्टूबर से पहले पूरी कर ली जाएंगी। जाने माने वकील और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रशांत भूषण भी योगेंद्र यादव के साथ हैं। निखिल रंजन ने बात की योगेंद्र यादव से और पूछा कि पार्टी तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर भी बनाई थी, अब नई पार्टी बनाने के पीछे उनका क्या इरादा है?
ये देश में जो अद्भुत ऊर्जा पैदा हुई थी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान, उस ऊर्जा को संजोने और उसे दीर्घकाल में देश धर्म में लगाने का काम है। जब हमने स्वराज अभियान जिस दिन बनाया था आज से एक साल पहले, हमने उसी दिन संकल्प लिया था कि हम एक नई राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हमें एक साल लगा क्योंकि हम वो सब गलतियां नहीं दोहराना चाहते थे, उन सब पुराने धर्रे के रास्तों पे नहीं चलना चाहते थे, और आम आदमी पार्टी के प्रयोग में जो सबक हमने सीखे उसके आधार पे सुधरना चाहते थे, वो लेके आज हम मौजूद हैं।
योगेंद्र जी, ये एक बहुत आम धारणा है कि राजनीति की एक अलग दशा दिशा और मिजाज है। आप धोखा खा चुके हैं, या यूं कहिए कि आप उसका सामना कर चुके हैं। तमाम राजनीतिक दलों के मामले में आपने बहुत लंबे समय तक इसको बहुत गंभीरता से देखा है, बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। आपकी पार्टी में भी इस बार ये ऐसा नहीं होगा, ये कैसे तय करेंगे आप?
अगर कोई ये पूछे कि आपके घर में अगले 20 साल तक कूड़ा नहीं होगा, इसकी क्या व्यवस्था कर ली है, उसका उत्तर यही हो सकता है कि मैं रोज झाड़ू दूंगा, और अगर मैं जिस दिन झाड़ू न दूं उस दिन मुझे कोई टोकने वाला व्यक्ति वहां मौजूद होगा। ऐसी कोई मशीन इजाद नहीं हुई है जो हर सुबह हमारे घर में झाड़ू लगा दे, लेकिन ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि जब हम झाड़ू न दें तो हमें कुछ लोग टोकने को आ जाएं। आज हमने जो नई पार्टी बनाने का संकल्प लिया है उसमें हमने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं, ऐसी संस्थाएं बनाई, स्वतंत्र एडवाइजर्स हमारे सलाहकार हैं, लोकपाल स्वराज अभियान में हैं, और अपनी हर चीज को पारदर्शी रूप से करने का संकल्प लिया है। इन्हीं चीजों के आधार पे हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं अगर ऐसा कुछ कह दूं कि इसकी कोई गारंटी या इसका कोई काला जादू हमारे हाथ लग गया है, वो नहीं है कि पार्टी बनाना और राजनीति करना धर्म का काम है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, मजहब नहीं, देश धर्म का काम है, इंसानियत के धर्म का काम है, ईमान के धर्म का काम है।
क्या स्वराज अभियान के जरिए उन लक्ष्यों को नहीं पाया जा सकता जिसके लिए आप ये पार्टी बना रहे हैं?
चुनावी राजनीति से बाहर रह के बहुत कुछ किया जा सकता है। आप रचना का काम कर सकते हैं, निर्माण का काम कर सकते हैं, संघर्ष भी कर सकते हैं, जैसा मेधा पाटकर, अरुणा रॉय, न जाने कितने जन आंदोलनों ने दिखाया है। आप आत्मबल कर सकते हैं, आप ज्ञान निर्माण कर सकते हैं, और ये सब बड़े काम है। लेकिन इसकी तार्किक परिणति होती है सत्ता परिवर्तन में, इसकी परिणति होती है सरकार की नीति बदलाव में, इसकी परिणति होती है शक्ति संतुलन के बदलाव, और उसमें चुनावी राजनीति की, सत्ता परिवर्तन की भूमिका है, इससे हम इनकार नहीं करते। तो मैं आज भी ये नहीं कहता कि पार्टी भर से देश बदल जाएगा, नहीं। हमेशा मैं बार बार कहता हूँ, आपको एक पांव सत्ता की राजनीति, सरकार, चुनाव में रखना ही होगा, लेकिन दोनों पांव अगर उसमें रख दिए तो फिसलना अवश्यंभावी। एक पांव इसके अंदर और एक पांव इसके बाहर, ये बहुत जरूरी है, और हम यही करने का प्रयास कर रहे हैं।
चुनावी राजनीति में इसकी शुरुआत कहां से होगी?
अगर पार्टी बनाई है तो निश्चित ही चुनावी राजनीति में दखल देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहां चुनाव आ गए वहां सब जगह पे टिकट बांटने का धंधा शुरू करें। इसका मतलब ये नहीं कि हर राज्य में चुनाव लड़ेंगे। इसके बारे में सोचेंगे, सोच समझ के सीमित स्तर पे अपने कार्य के हिसाब से क्षेत्र चुनेंगे। हमने अपनी पार्टी बनाने की प्रक्रिया किसी चुनावी कैलेंडर से बांधी नहीं।
ये थे योगेंद्र यादव जो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं अपनी।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज़, और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
भारत सरकार ने सऊदी अरब में फंसे हजारों बेरोजगार भारतीय मजदूरों की हर संभव मदद का वादा किया है। ऐसा ही भरोसा इंडोनेशिया में ड्रग्स अपराधों के मामले में मौत की सजा पाने वाले भारत के गुरदीप सिंह के परिवार को भी दिया गया। इंडोनेशिया में पाकिस्तानी नागरिक जुल्फिकार को भी ड्रग्स अपराधों के मामले में मौत की सजा सुनाई गई और उनके परिवार का साथ देने का वादा पाकिस्तान की सरकार भी कर रही है। लेकिन जितनी चिंता सरकारें विदेशों में फंसे अपने नागरिकों की करती हैं, क्या देश में रहने वाले लोगों की भी उन्हें उतनी ही फिक्र होती है? यही पूछ रहे हैं पाकिस्तान से वसुतुल्ला खान अपनी डायरी में।
हम जैसे लोग जिन्हें बाल की खाल निकाले बिना मुश्किल ही से नींद आती है, हम जैसों को संसार के किसी भी देश की किसी भी सरकार की कोई भी पॉलिसी मुश्किल ही से अच्छी लगती है, और लगती भी है तो अगर, मगर, दरअसल, परंतु लगाने से हम भला कहाँ बाज आते हैं। सीधे स्वभाव चीज़ें, पॉलिसियाँ और इंसान जैसे हैं वैसे ही पसंद आने लगे तो फिर हमें बुद्धिजीवी भला कौन कहेगा, वरिष्ठ टीकाकार या टिप्पणी बाज कौन समझेगा। मगर कभी कभी हम जैसों को भी सोच सोच के खुशी होती है कि हमारा देश जैसा भी है, यहाँ जीवन जितना भी कठिन या सफल है तो अपना जीवन है, तो अपने लोग। अब देखिए ना कि यही पाकिस्तान है जहाँ पिछले 1.5 वर्ष के दौरान लगभग 400 लोगों को फांसी दी गई। सूली पे चढ़ाने वालों में आतंकवाद से निमटने की खसूसी अदालतों के अलावा सैनिक न्यायालय भी शामिल हैं, जिनके बारे में मानव अधिकारों से जुड़े लोग और संगठन कहते हैं कि ये न्यायालय नहीं बल्कि अन्यायालय हैं। ये बात भी ठीक है कि पाकिस्तान इस वक्त मृत्यु दंड देने वाले देशों में 3rd नंबर पर है। पर पिछले हफ्ते ये देख के बहुत अच्छा लगा कि इसी पाकिस्तान के लोग जुल्फ़िकार अली को लेके बहुत चिंतित थे और दुआएं कर रहे थे कि इंडोनेशिया की सरकार उसकी फांसी टाल दे। हालांकि जुल्फ़िकार अली को नशीले पदार्थ स्मगल करने के जुर्म में मृत्युदंड सुनाया गया था। یہی ذوالفقار علی پاکستان میں ہوتا تو شاید خاموشی سے کسی جیل میں پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا، مگر ذوالفقار علی کسی باہر کی جیل میں لٹکے، یہ بات دکھ دینے والی تھی۔ پرنتو جب ذوالفقار علی کی پھانسی ٹلنے کی خبر آئی تو سبھی خوش ہوئے۔ ویسے تو بھارت کی لگ بھگ 16% جنتا آج بھی بھوک مری اور پوشن کی کمی سے جوجھ رہی ہے۔ مہاراشٹر جیسے راجیوں میں زمین نے ایک مدت سے اپنی خشک جیبیں الٹ رکھی ہیں۔ اس پہ یہ واویلا الگ سے کہ بھارت میں ہر ورش لگ بھگ 1,00,000 کسان بیماری، قرضے یا بھوک مری کے کارن آتم ہتیا کر لیتے ہیں، لیکن جب اسی بھارت میں یہ خبر پہنچتی ہے کہ لگ بھگ 10,000 بھارتی کامگار سعودی عرب میں بنا روزگار کئی دن سے بھوکے پیاسے ہیں تو سشما سوراج سمیت سب سوچنے لگتے ہیں کہ ان کی مشکل کیسے آسان کی جائے۔ یہی 10,000 بھارتی اگر دیش میں رہ رہے ہوتے اور اتنے ہی بھوکے پیاسے ہوتے تو شاید ایک دن کی خبر یا نیوز چینل پٹی سے زیادہ ان کی اوقات نہ ہوتی، مگر چونکہ یہ 10,000 ناگرک پردیش میں ہیں، یدی دیش میں رہنے والے کروڑوں لوگ ان کے لیے اور ان کی بھوک پیاس کا سوچ سوچ کے بے کل ہوئے جا رہے ہیں۔ انسان عجیب جانور ہے، پاس والے کو گھاس نہیں ڈالتا اور دور والے کے لیے چیخ چیخ کے گلا سکھا لیتا ہے، مگر یہ حرکت، یہ چبھن اپنے آپ میں کتنی پیاری اور معصوم ہے۔ مانوتا بس ایک ناخن کی کھرچ جتنی ہی تو دور ہوتی ہے، کھرچ کے تو دیکھیے ذرا۔
یہ تھے وسط اللہ خان، اور اس کے بعد اب باری اخباروں کی۔ واتسل رائے ہمارے ساتھ حاضر ہیں اسٹوڈیو میں۔ جی آج کیا کچھ کہہ رہے ہیں، اخبار کیا چھپا ہے؟
جی اشوک جی، یو پی میں شکروار کی دیر رات جو گھٹنا ہوئی تھی بلند شہر میں ہائی وے پر، وہ زیادہ تر اخباروں کے پہلے پننے پر پہلی خبر کے طور پر ہے۔ ہندوستان ٹائمز نے اس کو پہلی خبر بنایا ہے اور بتایا ہے کہ یو پی کے چیف منسٹر اکھلیش یادو نے دوشیوں کی گرفتاری کے لیے 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن طے کی ہے۔ امر اجالا اخبار بتاتا ہے کہ بلند شہر کے ایس ایس پی سے لے کر تھانے دار تک اس معاملے میں سسپینڈ کر دیے گئے ہیں۔ کئی اخباروں نے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اور گرفتار لوگوں کو ہائی وے کے حیوان کا نام دیا ہے، خاص طور پر ہندی اخباروں نے، ہندوستان، دینک جاگرن ان کو ہائی وے کے حیوان بتا رہے ہیں۔ انڈین ایکسپریس نے یو پی کی ہی ایک خبر مظفر نگر ضلع کے ایک گاؤں کی بتائی ہے، جہاں پر ایک مسلم پریوار کے گھر حملہ کیا بھیڑ نے، اور شک تھا ان کو کہ وہاں پر گو ہتیا ہوئی ہے۔
اس طرح کے معاملے لگاتار دیش کے الگ الگ کونوں میں ہو رہے ہیں۔
تو جس کے گھر پر حملہ کیا گیا تھا، خبر یہ بتا دی ہے کہ پولیس نے اس ویکتی کو گرفتار کر لیا ہے، اسے آج کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد سے گاؤں میں تناؤ ہے اور پولیس بل کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عام آدمی پارٹی کے ایک ودھائک شرد کی کل گرفتاری ہوئی تھی۔ عام آدمی پارٹی
لگاتار ودھائک جی گرفتار ہو رہے ہیں،
یہ خبر بھی سارے اخباروں میں ہے،
دلی سے چھپنے والے اخبار میں۔
انڈین ایکسپریس نے جو اپنی لیڈ خبر بنائی ہے، وہ احمد آباد میں جو دلت ریلی ہوئی تھی
کل،
اس کو جی اسے اپنی لیڈ خبر بتایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ دلت نیتاؤں نے بی جے پی کی سرکار جو گجرات کی ہے، اس کو 2017 کے ودھان سبھا چناؤ کے پہلے الٹیمیٹم ایک نوٹس دے دیا ہے۔
کئی ساری مانگیں رکھی ہیں ان لوگوں نے اپنی،
جی
جس میں یہ بھی ہے کہ وہ جو پارمپرک کام ہے کوڑا اٹھانے کا، میلا اٹھانے کا،
وہ نہیں کریں گے،
یا مرے پشوؤں کی کھال اتارنے کا کام وہ نہیں کریں گے
جی۔ اور ایک ریلی بھی 5 سے 15 کے بیچ نکالی جائے گی، 5 اگست سے 15 اگست کے بیچ میں، جو اونا سے احمد آباد سے اونا پہنچے گی۔ ٹائمس آف انڈیا کی پہلی خبر بتاتی ہے کہ سرکار نے سپریم کورٹ اور دیش کے سبھی ہائی کورٹ کے ججوں کے خلاف جو شکایتیں آتی ہیں ان کے لیے ایک پینل بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرول اور ڈیزل سستا ہو گیا ہے مدھی راتری سے، اس کی بھی خبر ہے۔ اور میں
کتنا سستا ہوا ہے شوتاؤں کو بتا
دیں، دلی میں 1.42 روپے پیٹرول کے دام کم ہوئے ہیں، ڈیزل کے 2.01 روپے دام کم ہوئے ہیں۔
چلیے دلی میں ہوا تو دیش کے باقی حصوں میں بھی۔
ایک میں ایک دلچسپ تصویر کا آپ کا ذکر کرنا چاہوں گا جو دینک بھاسکر میں چھپی ہے۔ اس میں ایک ٹریکنگ کے دیوانے سجن نے ہوا میں 200 فٹ اوپر جا کر شادی کی، اور پنڈت جی بھی ساتھ میں شادی کے لیے وہاں لٹکے رہے۔
اتنی اونچائی پر پنڈت جی بھی لٹکے رہے، دولہا دلہن بھی لٹکے رہے۔
وہ تصویر بڑی دلچسپ ہے دینک بھاسکر میں۔
جی بہت بہت شکریہ اخباروں کی تمام جانکاری کے لیے واتسل رائے۔ اور اس کے بعد اب باری کھیلوں کی دنیا پر آدھارت ہمارا ساپتاہک استمبھ کھیل کھلاڑی کی۔
کھیل اور کھلاڑی کاریکرم کے ساتھ میں ہوں آدیش کمار گپت۔ کاریکرم کی شروعات क्रिकेट से जमैका में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने अपनी स्थिति बेहद मजबूत बना ली। कल जब खेल समाप्त हुआ तब भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 358 रन था। इसका श्रेय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल को जाता है जिन्होंने अपने टेस्ट करियर का तीसरा शतक जमाते हुए 158 रनों की पारी खेली। उनके अलावा चेतेश्वर पुजारा ने 46 और कप्तान विराट कोहली ने 44 रन बनाए। स्टंप के समय अजिंक्य रहाणे 42 और रिद्धिमान साहा 17 रन बनाकर खेल रहे थे। वेस्ट इंडीज के रोस्टन चेस ने 91 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इससे पहले वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जबकि माना जा रहा था कि तेज विकेट पर शायद वो पहले गेंदबाजी करे। खैर, उनके फैसले का फायदा भारतीय गेंदबाजों ने उठाया और उसकी पहली पारी का अंत केवल 196 रन पर कर दिया। वेस्ट इंडीज की तो शुरुआत ही इतनी खराब रही कि बोर्ड पर टंगे इतने रन भी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि उनके शुरुआती 3 विकेट तो केवल 7 रन पर गिर चुके थे। वो तो अनुभवी मार्लोन सैमुअल्स और जर्माइन ब्लैकवुड ने पारी को संभाल लिया। ब्लैकवुड ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 62 गेंदों पर 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से 62 रन बनाए। सैमुअल्स ने 37 रन बनाए। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए 81 रनों की साझेदारी हुई। भारत के ईशांत शर्मा ने 53 रन देकर 2 और मोहम्मद शमी ने 23 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। लेकिन सबसे घातक साबित हुए स्पिनर आर अश्विन, जिन्होंने 16 ओवर में 52 रन देकर 5 विकेट झटके। वैसे इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले ही भारत के कप्तान विराट कोहली कह चुके थे कि वो वेस्ट इंडीज पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे।
अगर आपके पास मौका है विकेट लेने का और रन बनाने का टीम के लिए, तो बनाना चाहिए कोई भी टीम के अगेंस्ट हो। उससे आप मैच जिता सकते हैं टीम को, और वो हर मैच काउंट करता है एज अ टीम। हम लोग का यही एम है कि हम दूसरी टीम पे इतना फोकस नहीं है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें।
पहली पारी के आधार पर भारत को अभी तक 162 रनों की बढ़त मिल चुकी है और उसके 5 विकेट बाकी हैं। और अब खबर रियो से। रियो ओलंपिक खेल इसी सप्ताह से शुरू हो जाएंगे। दुनिया भर के खिलाड़ी अपने देश के लिए पदक जीतने का सपना आंखों में संजोए रोजाना रियो पहुंच रहे हैं। इनमें भारतीय खिलाड़ी भी शामिल हैं। सबसे पहले भारत की तीरंदाजी टीम रियो पहुंची, उसके बाद मुक्केबाज और निशानेबाज भी रियो पहुंचे, तो भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम भी रियो पहुंच चुकी है। उल्लेखनीय है कि भारतीय महिला हॉकी टीम 36 साल बाद ओलंपिक में दिखेगी। इससे पहले उसने साल 1980 में रूस में आयोजित हुए ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था, और तब भारत की पुरुष हॉकी टीम ने वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेल गांव में भारतीय दल का औपचारिक स्वागत कल होगा। इसमें भारत का तिरंगा भी फहराया जाएगा और राष्ट्रगान बजेगा। इसी बीच कुश्ती में 74 किलो भार वर्ग में भाग लेने वाले पहलवान नरसिंह पंचम यादव रियो जाएंगे या नहीं, इसे लेकर नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी आज शाम 4 बजे अपना फैसला सुनाएगी। उल्लेखनीय है कि नरसिंह यादव पिछले दिनों डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं टेनिस के कोर्ट पर रोमानिया की सिमोना हालिप ने अमरीका की मेडिसन केस को 7-6, 6-3 से हराकर रोजर्स कप में महिला एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया, जबकि पुरुष एकल वर्ग का खिताब शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जापान के केई निशिकोरी को 6-3, 7-5 से हराकर जीता। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
मुख्य समाचारों की तरफ चलें। इससे पहले आपको bbcindi.com पर लगी कुछ खबरों के बारे में बता दें। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपने सुना आज के कार्यक्रम में, पहली रिपोर्ट उसी पर थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकियों को कैसे डराया, अगर आपको ये खबर पढ़नी है तो आइए bbcindi.com के पन्ने पर। और एक खबर और इसी के साथ लगी है, भारतीय गोरे रंग के पीछे क्यों पागल हैं, जानिए सब कुछ bbcindi.com पर। और अब बारी मुख्य समाचारों की।
बीबीसी समाचार। इराक में तैनाती के वक्त मारे गए एक अमरीकी सैनिक की मां गजाला खान ने आरोप लगाया है कि रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को इस्लाम और कुर्बानी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के बाहरी हिस्से में स्थित नॉर्थ गेट कंपाउंड पर हमले की खबर है। ब्राजील की निलंबित राष्ट्रपति ज़िल्मा रुसेफ की बर्खास्तगी की मांग को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किए गए। मलेशिया में सुरक्षा से जुड़ा एक नया कानून अमल में आ गया है। इससे प्रधानमंत्री नजीब रजाक को नई शक्तियां मिल गई हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में पहली बार महिला गवर्नर निर्वाचित हुई है। भारत ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ जमैका में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट के नुकसान पर 358 रन बना लिए हैं। बीबीसी समाचार।
और इसी के साथ अब समय आ गया है कि नमस्कार भारत में हम आपसे विदा लें। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। ठीक 1 घंटे बाद आपसे फिर मिल रहे हैं कार्यक्रम विश्व भारती में। रहिए हमारे साथ। नमस्कार।